कातरालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। से निकले ओ माय गॉड, ऐसे मुख से निकल जाए उसको ऐश्वर्य कहते हैं। कोई चीज ऐसे देखो और अचानक आपसे मुख से निकल जाए हे मेरे भगवान, तो समझ लो कि ये भगवान का ऐश्वर्य है। तो इस दसम अध्याय के ऐश्वर्य में जो जो भगवान बता रहे हैं कि मेरी विभूति है, मतलब इसको देखने से मेरी आपको याद आ जाएगी। तो 11वें अध्याय में फिर अर्जुन वो सब चीजें सुनी थी, उसको देखना चाहेगा जो भगवान ने कहा है, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण रूप से देखना चाहेगा, तो 11वां अध्याय हो जाएगा। तब 12वां अध्याय भक्ति योग का है कि भक्ति व्यक्ति कब करता है, जब पहले भगवान के ऐश्वर्य से आदमी नमस्कार करता है और फिर भगवान का दर्शन विश्व रूप दर्शन में ऐश्वर्य का सारा प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दिया, तो फिर भक्ति योग का अध्याय आता है। ऐसे ही क्रम से 9वें और 10वें अध्याय को भगवद गीता में सबसे मुख्य गुह्यतम ज्ञान कहा गया है। तो भगवान के ऐश्वर्य, असल में अर्जुन का प्रश्न ये है कि मंदिर में भगवान का ध्यान हो ये तो संभव है, समाधि में भगवान का ध्यान हो ये तो संभव है, लेकिन हर समय उठते बैठते चलते फिरते काम करते भगवान का ध्यान कैसे रहे। अविकल्पेन योगेन, कोई विकल्प दूसरा न हो, निरंतर भगवान की स्मृति कैसे रहे। भाई पानी पीते हुए भगवान की स्मृति कैसे रहे, भोजन खाते हुए कैसे रहे, काम करते हुए खेत में कैसे रहे, युद्ध करते हुए कैसे रहे। तो भगवान ने ऐसे ऐसी विभूतियां बताई हैं जो हमारे जीवन में प्रतिक्षण उसका अनुभव हमको होना चाहिए। तो इन विभूतियों के अंतर्गत आज हम 27वें श्लोक में पढ़ रहे हैं, तो आइए इस श्लोक का पाठ करेंगे। उच्चाई सर्वसम्मश्वानां विधेमां अमृतोद्भवम्, ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपतिम्। उच्चाई सर्वसम्मश्वानां विदेमाम अमृतोद्भवम्, ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपतम्। आप पाठ कीजिए। उच्चैः सर्वसमश्वानां तो अश्वनाम, अश्व कहते हैं घोड़े को, अश्व का मतलब घोड़ा, और उच्च ही सर्व सबसे उत्तम प्रकार का, उच्च ही सर्व सब घोड़ों में जो सबसे श्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठ घोड़ा कहाँ से आया, किसी दूसरे संसार में घोड़े और घोड़ी से पैदा हुआ, बोला नहीं। कहाँ से प्रकट हुआ, विधि जानो माम, मेरी विभूति है। विभूति इसलिए है कि वो संसार के किसी घोड़े घोड़ी से नहीं पैदा हुआ है। तो कहां से प्रकट हुआ है, अमृत उद्भवम। अमृत उद्भवम का संकेत है कि जब समुद्र खीर सागर का मंथन किया गया था, और क्यों किया गया था खीर सागर का मंथन, अमृत के प्राप्ति के लिए। तो अमृत की प्राप्ति के लिए जो खीर सागर का मंथन किया गया था, उस खीर सागर के मंथन में से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में एक रत्न उच्चही शर्वा अश्व है। उच्चही शर्वा नाम का घोड़ा उस समुद्र मंथन में से प्रकट हुआ था। तो समुद्र मंथन की कथा 8वें स्कंद श्रीमद् भागवत में आती है, जहां भगवान विष्णु ने इंद्र को ये राय दी थी कि इस वक्त आप बलि महाराज जो असुरों के राजा हैं, दैत्यपति हैं, उसके साथ समझौता करो, दोनों मिलकर खीर सागर का मंथन करो और मैं अमृत प्रकट होगा आपको पिलाऊंगा। और भगवान ने उधर एक उदाहरण दिया है इंद्र को, एक नीति है। भगवान कहते हैं अगर किसी एक जाल में सांप और चूहा फंस जाए तो चूहे का काम है सांप को खाना, चूहा सांप को खा, सॉरी सांप चूहे को खाता है, भाई सांप तो चूहे को खाएगा, लेकिन अगर उस जाल में सांप चूहे को खाएगा तो सांप भी अंदर मर जाएगा, निकल तो नहीं पाएगा। तो क्या करना चाहिए, दोनों को समझौता कर लेना चाहिए कि भाई हम एक दूसरे को काटेंगे नहीं, मैं तुमको नहीं खाऊंगा, तुम जाल को काटो, हम बाहर निकले, जब दोनों बाहर आ जाए तो फिर हर एक अपना धर्म पालन करे, फिर सांप खाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अंदर से बाहर निकलने के लिए सांप को हर हाल में समझौता करना पड़ेगा, नहीं तो सांप भी मर जाएगा चूहा खाकर। ये भगवान विष्णु ने बताया राजनीति के, कहीं कहीं समस्या ऐसी होती है तो शत्रु से समझौता कर लेना चाहिए। तो आप ऐसे करो, इस वक्त बलि महाराज के पास जाओ और उसके साथ समझौता कर लो। तो इंद्र ने भगवान की आज्ञा मानी, बलि महाराज के पास गए, वो तो अशोक है, उसको कहते कि तुम्हारे शत्रु आ रहे हैं। बलि महाराज ने कहा इस वक्त मित्रता के भाव से आ रहे हैं। बलि महाराज के सामने प्रस्ताव रखा कि हम खीर सागर का मंथन करेंगे, अमृत मिलने के लिए, और हम सब आपस में बांट के उसका पान करेंगे। तो दोनों के समझौते में तैयारी हो गई। तो बोले मंदिर समुद्र मंथन क्षीर सागर का होगा तो मंथनी कहाँ से लाएंगे। बोला मंदराचल सोने का पर्वत है, जो मंदराचल पर्वत है उसको ले आना है। उठा के नहीं के लिए दोनों मिल के गए, दोनों ने उठाया, थोड़ी देर लाए और गिर पड़े, उठा चला नहीं। तो भगवान गरुड़ के ऊपर आए, उस मंदराचल पर्वत को उठाने में सहायता की और उठा के ला के क्षीर सागर में स्थापित भगवान ने कराया। तो ये मशवरा भगवान ने दिया, उठाने का कार्य में सहयोग भगवान ने किया और फिर कहा कि अब रस्सी कौन सी इसके लिए चाहिए जिससे मंथन हो। बोला वासु की सर्प को बुलाओ। बोला वासु की सर्प आएगा तो भगवान तो गरुड़ के ऊपर चढ़ के आए थे और गरुड़ पे ही मंदराचल को लाए थे। गरुड़ को बोला तुम थोड़ी देर घूम के आओ क्योंकि गरुड़ खड़ा होगा तो सांप आएगा नहीं, वासुकी के आने से पहले गरुड़ को वहां से जाना चाहिए। तो गरुड़ थोड़ी देर के लिए चला गया। तो वासुकी वहां आया तो वासुकी कहा आप तुम्हारे को इसकी मन रस्सी बनाएंगे और इस समुद्र का मंथन करेंगे। बोला मैं तो मेरे को तो खींच खींच के तुम्हारा दोनों खींचोगे तो मेरा तो पेट सारा कस जाएगा। बोला अमृत तुम्हें भी पिलाएंगे, अच्छा मुझे भी अमृत मिलेगा। तो उसने हाँ कर दी। और जब असुर जो सारे हैं और देवता वासुकी के मुख की तरफ खड़े हो गए तो असुर ने कहा हम आपसे शक्तिशाली हैं, मुख की तरफ हम खड़े होंगे, आपको पूंछ की तरफ जाना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा देवता जब तक अमृत प्रकट न हो तब तक छोटी बातों के ऊपर झगड़ा नहीं करना, जो मुख्य उद्देश्य जब तक वो प्राप्त नहीं हो तो छोटी छोटी बातों के ऊपर टाइम खराब करके झगड़ा मत करो, आप पूंछ की तरफ चले जाओ। तो देवता पूंछ की तरफ चले गए, देवता पूंछ की तरफ चले गए तो दोनों ने थोड़ा खींचा तो पर्वत के नीचे तो कोई सहारा था नहीं तो पर्वत नीचे धंसने लगा। फिर भगवान को प्रार्थना की गई तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। ये भगवान का कच्छप उतार समुद्र मंथन के जो मंदराचल पर्वत पर्वत है उसको अपनी पीठ के ऊपर धारण किया और फिर दोनों ने हिलाना शुरू किया तो ऊपर से पर्वत हिलने लगा। तो भगवान हजार हाथों से ऊपर से चोटी को पकड़ लिया, अब नीचे से भगवान ने उसको सहारा दिया, ऊपर से पकड़ लिया। अब दोनों ने खींचना शुरू किया लेकिन दोनों में शक्ति नहीं थी तो सतोगुण की प्रधानता से भगवान देवताओं में प्रवेश हुए, रजोगुण की प्रधानता से असुरों में प्रवेश हुए और फिर जोर से मंथन शुरू हुआ। जैसे मंथन शुरू हुआ उसमें बहुत औषधियां, उस वक्त जामवंत कहता है समुद्र मंथन के समय मैंने औषधियां लाके उसके अंदर डाली थी, तो बहुत सी औषधियां डाली गई और जबर मंथन जैसे हुआ तो उसके अंदर से पहले कालकूट विष निकला, तो पहला रतन निकला क्या विष निकला और सब हाहाकार करने लगे कि ये विष तो सर्वनाश कर देगा, विश्व तो प्रलय हो जाएगी। अब सारे देवता वहां थे, भगवान एक भोलेनाथ नहीं थे शंकर, अरे सब तो देवता आए एक भोलेनाथ नहीं आया। बोला ये काम तो भोलेनाथ का है, आप भगवान शंकर को प्रार्थना करो और भगवान प्रकट होकर इस विष का पान करके सबकी रक्षा करेंगे। अब तो देवताओं ने आराधना की, शंकर जी ने पार्वती से पूछा और पार्वती ने कहा परोपकार के कार्य करना यही तो आपका मुख्य उद्देश्य है, आप निश्चित रूप से संसार को संकट से बचाइए और इस विष का पान कीजिए। शंकर जी आए सबके देखते देखते उनने विष को अपनी अंजलि में भर लिया और विष को अंजलि में भरने के बाद शंकर जी ने उसको पान किया, लेकिन जबान पे रख नहीं सकते थे, वहां तो राम नाम चलता है हर समय, हृदय में भी नीचे नहीं ले जा सकते क्योंकि उधर तो भगवान हमेशा विराजमान है, तो कंठ में ही अटका दिए और शंकर जी का नाम हो गया नीलकंठ। तो ये समुद्र मंथन की कथा ही है, कोई तकरीबन 10 अध्यायों में श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध में है और यहाँ तो भगवद गीता के 10वें अध्याय के 27वें श्लोक में जहाँ उजैषव अश्वानाम विधिमाम अमृत उद्भवम, अमृत के मंथन के समय जो घोड़ा निकला था उचित सर्व वो मेरी विभूति है भगवान कहते हैं। और दूसरा जो लाइन में है ऐरावतम गजेंद्राणाम, और गजेंद्र गजेंद्र गज का मतलब हाथी, इंद्र का मतलब राजा, जो हाथियों का राजा गजेंद्र है वो ऐरावत उनमें जो है वो मेरी विभूति है। ऐरावत जो है ये ऐरावत कहाँ से निकला था, बोला ये ऐरावत भी उसी समुद्र मंथन से निकला था, ये भी मेरी विभूति है। तो विष को जब शंकर ने पान किया तो एक आश्चर्य की बात है, ये ध्यान में रखना चाहिए, विष पीने के बाद भी शंकर महादेव कहलाए क्योंकि परोपकार के लिए पिया, और अमृत पीने के बाद भी राहु और केतु क्रूर ग्रह है। अमृत पिया राहु ने तो अमृत पिया ना, तब गर्दन कटा, अमृत पीने के बाद भी गर्दन कटा और क्रूर ग्रह है, और जबकि शंकर विष पी के भी महादेव। तो उद्देश्य जो है वो मुख्य है। तो शंकर जी के हाथों से थोड़े सी अमृत की बूंदे नीचे गिरी उंगलियों के बीच में से, उसमें से जहरीली सारी जहरीली औषधियां सर्प में बिच्छू के अंदर जो जहर है विष है वो विष, ये सब उस विष का थोड़ा सा भाग है जो अभी भी सृष्टि में है। और इसके बाद जब जोर से समुद्र दोबारा मंथन शुरू हुआ तो उसके अंदर से अप्सराएं निकली तो कहा स्वर्ग में जाए। फिर बहुत सुंदर ये घोड़ा उच्चैः सर्व निकला तो बलि महाराज ने कहा हमको कुछ मिलना चाहिए, बोल ठीक है ये आप ले लो। और फिर निकला ऐरावत हाथी तो इंद्र ने कहा ये मेरे को दे दीजिए। फिर निकली वारुणी, बलि महाराज ने कहा ये हमको चाहिए असुर आप ले लो। तो इस तरीके से जो निकलता गया वो आपस में बंटता गया। उस समुद्र मंथन के अंदर से 14 रथों में एक चंद्रमा है जो निकला है आकाश में है, ये भी समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ है, लेकिन 14 में से 3 रतन मुख्य माने जाते हैं। एक निकली है लक्ष्मी, समुद्र मंथन से लक्ष्मी का प्रकट हुआ है। तो ये हाथी ऐरावत भी सामान्य हाथी नहीं है, इसके लिए इसको गजेंद्र कहते हैं, हाथियों का राजा सामान्य नहीं है हाथी, ये अमृत मंथन के समय समुद्र से प्रकट हुआ है भगवान की विभूति। और जो मुख्य 3 रत्न है उसमें के एक लक्ष्मी को माना जाता है जो सबका पालन पोषण करती है। और लक्ष्मी जैसे प्रकट हुई तो उसका स्वयंवर हुआ उधर और उसने भगवान विष्णु का वरण किया। उसके बाद निकली कामधेनु गाय, अब देवता भी गाय की सेवा करने के लिए तैयार नहीं, असुर भी तैयार नहीं, गाय की तो सेवा है, घोड़े पे चढ़ के घूमना है, चढ़ेंगे हाथी पे चढ़ेंगे, उनको तो चढ़ने वाला माल तो मिल गया लेकिन सेवा जो करनी थी बोला ये विष्णु को दे दो। तो इसके बाद निकाले श्लोक में है धेनुनाम अस्मि कामधेनु, धेनुनाम अस्मि कामधेनु। तो ये कामधेनु गाय जो है ये समुद्र मंथन से निकली प्रकट हुई, ये सामान्य गाय नहीं है, भगवान की विभूति है। ये कहा ऋषियों को दे दो, बोला ये दूसरी सबसे बड़ा रत्न है। क्यों? क्योंकि ऋषि इस गाय से मक्खन घी से यज्ञ करेंगे तो सारे विश्व का कल्याण होगा। यही तो भागवत की पहले स्कंद की कथा है कि ऋषियों ने देखा कि कलयुग के लोग बहुत दुखी हो जाएंगे, उनको दुख से कलयुग के बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबने कहा हमको यज्ञ करना चाहिए। तो सब नैमिषारण्य तीर्थ में आके और दीर्घ काल बहुत समय तक यज्ञ का अनुष्ठान करके बैठे। इसका मतलब ऋषियों के पास गाय होनी चाहिए जिससे वो घी मक्खन से यज्ञ करके ब्रह्मांड के सारे वातावरण को शुद्ध रख सके। बहुत अति आवश्यक है। और गाय के शुद्ध देसी गाय के घी के यज्ञ में से वातावरण शुद्ध होता है। कुछ समय पहले कलकत्ते में कुछ महात्मा लोग यज्ञ करना चाह रहे थे तो सरकार के लोगों ने आके कहा नहीं, हाँ आज धुआं होगा, प्रदूषण बहुत हो जाएगा, पहले बहुत प्रदूषण है, आप यज्ञ बंद कर दो। तो जो संत थे महात्मा जो यज्ञ करा रहे थे उसने बोला आपके पास प्रदूषण चकास का यंत्र है? बोला हमारे पास मशीन है प्रदूषण का, तो हम चेक करते हैं। बोला ऐसे करो, हमारे पास शुद्ध देसी गाय का घी है और यज्ञ हम करते हैं वेद विधान से, और इस यज्ञ में आप अपने यंत्र लगा के रखो, हमारी आहुति से अगर आपका वातावरण प्रदूषण शुद्ध हो और कम हो तो यज्ञ करने के लिए आप रोकना मत, और आपका प्रदूषण बढ़े तो हमको कहना, हम यज्ञ बंद कर देंगे। तो सरकार ने अपने यंत्र लगा के रखे और शुद्ध गाय का घी तो अपना था, ऋषियों के जो जो संत थे करने वाले और वेदों के विधान से शुद्ध सामग्री लाए, और जैसे यज्ञ शुरू हुआ तो सारे यंत्र के अंदर प्रदूषण कम होने के संकेत आने लगे कि चारों ओर प्रदूषण कम हो रहा है। अब आपका यंत्र क्या कह रहे? बोला हमारा यंत्र कह रहा है प्रदूषण नहीं हो रहा है और जो पहले है वो कम होता जा रहा है। बोला फिर यज्ञ कर सकते हैं? बोला यज्ञ करो। तो इसलिए पहले कहते हैं कि यज्ञ में, अब ये जो आजकल का यज्ञ सामान्य व्यक्ति जो घी तो है नहीं, पता नहीं कौन सी चर्बी डालते हैं जिसको, वो तो यज्ञ तो नहीं है, ये तो पशु मेद यज्ञ हो जाता है। क्योंकि असल में घी और गाय का दही से निकाला हुआ, देसी गाय का दही जमा के उसके मंथन करने से घी निकला हुआ, आज के दिन में जहां छाछ नहीं बिकती है वहां पड़ेगा 1700 रुपया का एक किलो, और जहां छाछ बिकती है 10-15 रुपया किलो वहां वो 1300-1400 में मिलेगा, इससे कम में नहीं मिलेगा। अगर इसके कम में कहीं गाय के घी के नाम में मिलता है तो गाय का घी नहीं। जो मलाई से घी निकलता है और बाकी दूध जो है वो बेचा जाता है, तो दूध तो जा रहा है 40-40 रुपए किलो में दूध चला गया, मलाई से घी निकाला गाय का तो वो वाला घी भी 800 और 900 से कम में नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूध का कीमत मिल गया ना। तो प्रायः जो डेयरी वाला घी अगर है भी तो मलाई से बनाया हुआ है, दही से बनाया हुआ नहीं है, और मलाई वाला घी यज्ञ वज्ञ के काम का नहीं होता है। बहुत दोनों में बहुत बड़ा दिन रात का अंतर है। दही के मंथन का जो मक्खन से बना हुआ घी है वो शुद्ध घी है, और वो भी देसी गाय का होगा तब किसी काम का है। पहले हमारे पास ये गायों का घी इतना महंगा क्यों नहीं था? क्योंकि गाय पहले चरने जाती थी बाहर, और गायों के लिए गौचर भूमि थी, इसलिए चरने के लिए गायों को कोई रुकावट नहीं थी, तो खर्चा कुछ नहीं था। गाय घर आती थी, चर के बाहर से आती थी, और कोई दूध वाली गाय होती थी थोड़ा अपने खेत से जो अन्न रखा होता था घर में वो उसको खिलाया जाता था। तो गाय के ऊपर खर्चा इतना नहीं था जितना गाय सेवा करती थी समाज की। अब गाय घर में बंधी हुई है तो फिर को तो सब कुछ खिलाना पिलाना देखना जगह सब हो तो भारी पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक आश्चर्यजनक यहाँ निर्णय लिया गया कि घोड़ा तो दिया गया बलि महाराज को और हाथी दिया गया इंद्र को और गाय दी गई ऋषियों को, और ऐसी कामधेनु गाय का दो जगह के हमारे को प्रसंग भागवत में मिलता है। एक गाय वशिष्ठ महाराज के पास थी, वो नंदिनी के नाम से थी, और जो गाय कामधेनु का मतलब सब इच्छाएं पूरी करने वाली थी, ऐसी दूसरी गाय परशुराम भगवान अवतार जो है उसके पिता जमदग्नि के पास थी। उस गाय को सहस्रबाहु कार्तवीक अर्जुन चुरा पकड़ के जबरदस्ती ले जा रहा था, तो उसके साथ परशुराम का युद्ध हुआ था और उसके बाद परशुराम ने क्षत्रियों का संहार किया। और वशिष्ठ जी की गाय को विश्वामित्र राजा के पुत्र है, वो गाधी के पुत्र है, वो ले जा रहे थे, और गाय ने अपनी रक्षा स्वयं की, कहा महाराज आप इसको मुझे दे रहे हो कि जबरदस्ती ले जा रहा है राजा? बोला मैं नहीं दे रहा हूँ, ये जबरदस्ती ले जा रहा है। बोला ठीक है फिर मैं अपनी रक्षा करता हूँ, और गाय ने अपनी रक्षा करके सारी विश्वामित्र की सेना को हरा दिया। तो ये जो गाय है कोई सामान्य नहीं है, भगवान की विभूति जो गाय है उनका नाम ही कामधेनु, तो कामधेनु है। धेनु नाम अश्मी, धेनु नाम असल में धेनु का मुख्य अर्थ है धन। पहले भारतीय संस्कृति जो थी उसमें गौ धन सबसे बड़ा धन माना था, गौ धन सबसे बड़ा धन माना जाता, जिसके पास गाय था वो धनवान था, वो भाग्यशाली माना जाता था। कृषि और गौ रक्षा ये हमारा आर्थिक व्यवस्था का, वैदिक आर्थिक व्यवस्था का सबसे मुख्य अंग हुआ करता था, और ये दोनों अब भ्रष्ट हो चुके हैं। इसलिए आर्थिक व्यवस्था कागज के टुकड़ों के ऊपर है और इन पन्नों का कोई वैल्यू नहीं है, एक रात में सब बेकार बंद भी हो सकते हैं और पानी में गिरा हो तो गीले हो जाएंगे, आग में जल जाएंगे, ये तो किसी काम के है नहीं। और इसकी वजह से लोगों ने एक दूसरे का सहयोग करना ही छोड़ दिया, समझते पैसे से सारा काम हो जाएगा, पहले एक दूसरे की जरूरत हुआ करती थी, वो सब खत्म हो गई। तो ये बहुत बड़ा यहाँ तो दूसरा मुख्य रत्न क्या निकला, पहला तीन मुख्य रत्नों में पहला क्या मुख्य रत्न है, लक्ष्मी, दूसरा है कामधेनु गाय और तीसरा है अमृत। वो जो यहाँ लिखा है अमृत उद्भवम, अमृत को प्रकट करने के लिए जो अभियान देवताओं और असुरों ने किया था क्षीर सागर के मंथन का, उसमें से ये जो हाथी और घोड़ा निकला है ये मेरी विभूति है, क्योंकि ऐसे हाथी और घोड़े इस संसार में पाए नहीं जाते, क्योंकि वो सामान्य नहीं है, वो समुद्र मंथन से प्रकट हुए, वो रत्न है, वो मेरी विभूतियाँ। बात यह है कि ये हमको तो देखने को मिलते नहीं है, या तो खचर मिलते हैं, घोड़े मिलते हैं, या तो ये नहीं है, ये तो देवताओं के पास है। और चौथी लाइन में लिखा है नराणाम च, नराणाम मतलब नर का मतलब मानव, च उनमें मैं हूं नर अधिपति मतलब राजा। जो मानव समाज में राजा के स्थान के ऊपर विराजमान होता है वो मेरी विभूति है, या उसमें मेरा अंश होता है। ये वेद शास्त्र की मान्यता है कि राजा में भगवान विष्णु का अंश होता है, वो भगवान की विभूति है। श्री चैतन्य चरितमृत में आता है कि जब सनातन गोस्वामी पाद ने छुट्टी लेके कहा मैं काम नहीं कर सकता हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और घर में उन्होंने पंडितों को बुलाकर और भागवत का श्रीमद् भागवत के पुरस्कार शुरू किया, पाठ शुरू किया, तो नवाब हुसैन शाह ने अपना वैद्य डॉक्टर भेजा के देखो हमारे मंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या। तो जब मंत्र देखने के लिए वैद्य गया तो देखा कि वो तो बीमार नहीं है, तो उन्होंने जाके समाचार दे दिया महाराज वो तो आपके मुख्यमंत्री वो जो दबीर खास है वो या साकिर मलिक है वो ठीक है, उसको बीमारी कोई नहीं है। तो स्वयं हुसैन शाह जब मिलने आया तो सनातन गोस्वामी पाद उठ के खड़े हुए और उसका सम्मान किया वहां श्री प्रभुपाद लिखा है, क्योंकि सनातन गोस्वामी जानते थे कि जो कैसे भी समय के साथ राजा बना हुआ है तो उसके अंदर भगवान की विभूति और अंश होता है, इसलिए उसका सम्मान करना हर नागरिक का धर्म है। और अभी तो नहीं रह गया, लेकिन कुछ समय पहले तक पूरे विश्व के अंदर नेपाल के राजा को कोई भी नेपाल का नागरिक हाथ नहीं मिलाता था, उसको भगवान का प्रतिनिधि मानते थे, राजा को भगवान का प्रतिनिधि मानते थे नेपाल में। ये आज से 10-15 साल तक ये परंपरा थी, जब तक ये डीमन का कर्ज नहीं आया। डीमन का कर्ज मतलब डेमोक्रेसी, जिसमें कुत्ते बले बिले गधे सब समान होते हैं, तो ये जब तक नहीं था। और राजा महाराजा जब राज करते थे, और दूसरा राजा हमने अपने जीवन में जिसकी राजाई की महिमा सुनी थी, वो ईरान का राजा था रजा शाह पहलवी। वो जो पुरानी उम्र के लोग हैं उनको मालूम है कि उसका राज जो ईरान का राजा था, उसके राज उसने अपने बेटे को युवराज पद के ऊपर उस जमाने में घोषित किया था, और राजा के सम्मान के साथ रहता था। और दुख तो ये है कि इतना सारा ईरान पूरा जो पारसियों का राजधानी थी, एक नाम का फारसी हुआ नहीं रहेगी, सारा समाप्त हो गया समय के साथ। लेकिन वो राजा था, तो राजा वोट से चुन के हुए राजा की बात नहीं है यहाँ। राजा छप तो अभी कहीं है नहीं, अभी भी थोड़ा सा राजाओं के नाम से कुछ चलता है तो खाड़ी देशों में, मिडल ईस्ट में चलता है। ये जितने भी शेख हैं, ये खानदानी परंपरा में राजा चलते हैं। जो शेख है उसका बेटा है पीछे राजा बनेगा, तो शहजादा बनेगा, तो वहाँ कानून अभी भी ठीक चल रहा है। जहाँ एक राजा है वहाँ कोई गलत काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता, वहाँ अभी भी राज चल रहा है, और वहाँ सब लोग ठीक ठाक काम कर रहे हैं। तो नर्म में नराधिपम राजा मैं हूँ। अब इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ, सब जितने संसार में घोड़े दिखते हैं उन घोड़ों में जो उचही शर्मा नाम का सर्वश्रेष्ठ अमृत के समुद्र के मंथन के समय प्रकट हुआ था कीर्ति सागर से, वो मेरी विभूति है। और जो हाथी एरावत नाम का इंद्र के पास है, वैसे इंद्र के पास जो भी हाथी होता है उसका नाम एरावत होता है, क्योंकि ये समुद्र मंथन से निकला है। तो एरावत हाथी इंद्र की सवारी है, जैसे शंकर जी की सवारी नंदी है, ऐसे इंद्र की सवारी एरावत हाथी के होती है। भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ है, और ब्रह्मा जी हंस के ऊपर आते हैं, तो ऐसे हरि की अपनी अपनी जो सवारी होती है जो उसका, तो ऐसे इंद्र की सवारी एरावत हाथी है। और मानव समाज के अंदर में प्रभुपाद ने शब्द लिखा है अंग्रेजी में मोनार्क किंग, ऐसा नहीं लिखा है प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट, लिखा है राजा। जो परंपरा से, जिनको परंपरा से राजाओं की पीढ़ी दर पीढ़ी राजा चलते आते थे, और पूरा भागवत का नवा स्कंद तो ऐसे राजाओं के वंशावली से भरा हुआ है। और यहाँ तक लिखा है कि क्योंकि दुरु वंश से उत्पन्न शरीर महाराज वैण का था, तो ऋषियों ने कहा कि दुरु के अंश से उत्पन्न इस शरीर से का विनाश नहीं होना चाहिए, इससे ही हमको एक राजा उत्पन्न करना चाहिए और ये परंपरा चलानी चाहिए। तो मृतक मैण वैण का शरीर ध्रुवंश का शरीर है। ये चौथे स्कंद भागवत में कथा आती है कि ध्रुव के वंश में उसके बेटे उत्कल ने तो राज करना स्वीकार नहीं किया, और आगे जो महाराज अंग हुए उनके पुत्र नहीं था, तो उसने यज्ञ किया उसको पुत्र हुआ, लेकिन उसकी पत्नी जो सुनीता थी वो काल की कन्या थी, तो ननियाल जो उसका था असुर कुल का था, इसलिए जो बेटा पैदा हुआ जिसका नाम वैण हुआ उसके ऊपर उसके नाने का बहुत प्रभाव था, इसलिए क्रूर स्वभाव का असुर था। और उसके दुखों से महाराज अंग ने तो बहुत ऐसे अद्भुत श्लोक भागवत में कहे हैं कि न पुत्र होना अच्छा था। अच्छा पुत्र होता है तो उसमें आसक्ति है, बुरा है तो बदनामी है, इससे अच्छा है कुछ भी न मिले। लेकिन अब ये इतना बदनाम कर रहा है, वो रात रात को राज छोड़ के चले गए, तो वेण को राजा तो बनाया, लेकिन वेण ने कहा कि मैं आपको मालूम नहीं है कि मैं राजा हूं, तो मुझमें विष्णु का अंश है, तो अब मेरी पूजा करो ना, आप दूसरों की पूजा क्यों करते हो? भाई सबके अंदर भगवान है तो वो सब भगवान थोड़ी हो गए, तो तुम भगवान की विभूति हो तो भगवान तो नहीं है। भगवान की विभूति भगवान नहीं है, भगवान की विभूति भगवान की स्मृति दिलाने के लिए है, भगवान को याद कराने के लिए है। लेकिन वेण ने तो सब यज्ञ बंद करा दिया, बोला किसी और का क्यों करते हो तुम? सब ऋषियों ने कहा, देखिए वेण जी, क्रोध था लेकिन क्रोध छुपा के प्रेम से कहा कि आप यज्ञ क्यों बंद कराते हैं? ये तो देव पूजा सदा से चली आ रही है, विष्णु भगवान यज्ञपति है, उसकी पूजा होनी चाहिए। और वेण कहता है तुम तो वेश्या जैसी बात कर रहे हैं, जब पति अपना है तो फिर दूसरे किसी के पास जाके वेश्या वाली वृत्ति क्यों रखते? जब मैं राजा विष्णु हूं तो दूसरे की पूजा क्यों करते हो? मुझ में विष्णु है, आप मानते हो कि राजा में है कि नहीं है, तो ये आपकी वेश्या वृत्ति हो गई, मेरे होते हुए दूसरे की पूजा की बात मेरे सामने कर रहे हो। तो ऋषियों को क्रोध आ गया, उन्होंने वेण को हुंकार करके ओम का उच्चारण किया और वेणु का शरीर छूट गया। अब तो वेण की माँ सुनीति ने उसको रख दिया सुगंधित तेलों में संभाल के। अब ऋषियों ने कहा राजा कहाँ से लाए? तो कहा नहीं, ध्रुव वंश के उत्पत्ति से शरीर वेण के से अंतराजा पैदा करना पड़ेगा, हम नहीं चाहते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य वहां लिखा है, इसमें प्रभुपाद कहते हैं वेण का जो शरीर था ये दुर्वंश की परंपरा का था, तो उसको ऋषियों ने कहा इसी से राजा को उत्पन्न करेंगे। और उनके पास ये विद्या थी, क्योंकि आत्मा शरीर से अलग होता है, वेण की आत्मा तो वापस चली गई थी, वो वापस नहीं ले जा लाई जा सकती, लेकिन वेण के शरीर के मंथन से दूसरी आत्मा का आवाहन किया जा सकता है। तो उन्होंने वेण के शरीर के नीचे के हिस्से अधोभाग का मतलब पांव का मंथन किया, तो मंथन से एक काला कलूटा पुरुष निकला और बहुत निम्र था, कहा मैं कहाँ बैठूं? तो सबने कहा निशीत बैठ जाओ, तो उसका नाम हो गया निशान। और उसको कहा कि आप पर्वतों में और जंगलों में रहो। और श्री प्रभुपाद ने लिखा है क्योंकि निशान स्वभाव से ही चोर डाकू होते हैं, तो उनको नगरों में नहीं रहना दिया जाता, वो गिरिवासी और वनवासी रहते हैं। तो वेण के अंदर जो पाप का भाग था वो सब निषाद के रूप में प्रकट हुआ, और फिर उसके दोनों हाथों का मंथन किया तो सीधे हाथ से पृथु महाराज और उल्टे हाथ से अर्ची का प्रकट्य हुआ, और इन दोनों को भगवान लक्ष्मी नारायण का अंश अवतार मानते हैं, ये अवेश अवतार है। तो वेण के शरीर की परंपरा से पृथु महाराज का उत्पत्ति हुई, और पृथु महाराज का राज ये चौथे स्कंद में वहाँ ये वर्णन आता है कि शरीर जो है परंपरा से राजा का होना चाहिए। और ऐसे सारी बड़ी लंबी परंपरा है राजाओं की, 12वें स्कंद में चंद्रगुप्त मौर्य तक की परंपरा का वर्णन है, और चाणक्य पंडित की महिमा का वर्णन है। उसके बाद कहा कि मलेच्छ आएंगे, फिर ये परंपरा समाप्त हो जाएगी, राजकुल समाप्त हो जाएंगे, और फिर कोई भी जैसी प्रजा के अंदर पतन होगा वैसा ही वो अपने जैसा ही किसी राजा को चुनेंगे, तो उसके बाद ये परंपराएं समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं राजा का पहले राज अभिषेक किया जाता था, तो राजा को अपना परंपरागत जो उनका सिंहासन, एक सिंहासन राजा का अलग हुआ करता था, और राजा का मुकुट और ताज वो परंपरा से चलता आता। भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु को वचन दिया था, जब तक हस्तिनापुर का सिंहासन और ताज सुरक्षित हाथों में नहीं रहेगा तब तक मैं इसकी रक्षा करता रहूंगा, ये मेरा वचन। इसका मतलब शांतनु महाराज का जो मुकुट था वो मुकुट और सिंहासन चलता हुआ आगे पांडु महाराज के पास आया, पांडु महाराज के पास जब वो युधिष्ठिर के पास आया तब भीष्म पितामह संतुष्ट हुए, मुतमैन हो गए, सेटिस्फाइड हो गए कि अब हस्तिनापुर का सिंहासन सुरक्षित है। तो उस राजा का सिंहासन, राजा का मुकुट, उसके ऊपर कोई उसका और कोई उसको इस्तेमाल नहीं करता था, उपयोग नहीं लाता था, और दूसरे राजा को बैठने से पहले अभिषेक करके सिंहासन पे बिठा के वो मुकुट पहनाते थे। तो ऐसे माना जाता है जैसे बाजार से हम मूर्ति खरीद के आते हैं तो दुकान में कोई मूर्ति की पूजा नहीं करता है, लेकिन जब पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा करके उसको स्थान पे विराजमान करते हैं तो फिर उसकी पूजा होती है। ऐसे सामान्य व्यक्ति जो राजा का पुत्र है, जब उसका अभिषेक होता है मंत्रोच्चारण, और मंत्रोच्चारण स्वस्ति वाचन और वेद के मंत्रों को उच्चारण करके जैसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ऐसे राजा के अंदर आवाहन किया जाता है भगवान का कि ये प्रजा का पालन करे। जैसे भगवान विष्णु का काम है पालन करना, तो पालन करने का काम राजा को दिया जाता है क्योंकि वो प्रजा पालक है, उसको वैसे भी प्रजा पालक कहते हैं। तो उसको असल में ऋषि बैठ के आवाहन करके भगवान का आवेश का आवाहन करते हैं कि ये राजा अब सिंहासन के ऊपर बैठ के प्रजा का पालन करेगा। लेकिन अब वो राजा रहे नहीं, न ऋषि किसी का अभिषेक करके स्थापित करते हैं, ये वोटू वाले राजा है, ये तो प्रजा का पोषण नहीं करते, पालन नहीं करते, शोषण करते। ऐसे राजा जब अपना मुकुट पहन के बाहर निकलते थे तो लोग दोनों तरफ खड़े होकर फूलों की वर्षा करते थे। ऐसे राजाओं को कोई भय नहीं होता था प्रजा से, क्योंकि राजा प्रजा को पुत्र के समान मानता है। जैसे भगवान विष्णु का प्रतिनिधि है तो सबके साथ समभाव रखता है, न्याय ऐसा अपने बेटे से भी वही न्याय करेगा जो किसी और अपराधी से करेगा, उसके न्याय में कोई ऐसी खोट नहीं होती थी। भगवान विष्णु को न्याय करने की जरूरत पड़ गई, श्री कृष्ण के रूप में भगवान साक्षात जब अवतार लिया तो भौमासुर भगवान का अपना पुत्र है, जो भौमासुर है नरकासुर जिसको कहते हैं, ये तो वामन देव का पृथ्वी देवी से पुत्र उत्पन्न हुआ था, उसका नाम है भौमासुर। लेकिन आज ये असुर हुआ और आदित्य माता के कुंडल को वहां से जबरदस्ती लूट के लाया, वरुण का छाता लूट के लाया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। ये राजा की परिभाषा है कि दंड देना है तो जो अपराधी है, चाहे अपना है या पराया, राजा का संभाव होता है। तो राजा ऐसे सामान्य राजा का यान शब्द नहीं है, प्रभुपद ने इसने ये जो शब्द लिखा है ना, किंग ऊपर किंग लिखा था लेकिन नीचे मोनार्क लिखा है, कि जिसको ऋषि ब्राह्मण साधु अभिषेक करके और राज सिंहासन के ऊपर जैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है ऐसे आवाहन करके बिठाएं, तब वो राजा नरों का नराधिपति भगवान की विभूति कहलाता है। नहीं तो ये जो आजकल के जो मंत्रिमंडल में बैठे हुए राजा हैं, ये कोई विभूति नहीं है भगवान, ये तो भूत है। भूत इसलिए है कि जब ये अपनी सीट से उतरते हैं तो इनके पीछे छप लगता है भूतपूर्व, ये तो भूत है, तब इसके ऊपर तो पहले भूत चाहिए, इसलिए भूत लिखते हैं ना सबके ऊपर। एक आदमी को कहा आप मंत्री बन जाओ, नहीं बनूंगा, बोला क्यों, बोला 5 साल के बाद भूत लगा, आप मेरे पीछे भूत लगा दोगे कि ये भूतपूर्व मंत्री है। तो हम ये तो नराधिपति नहीं है, तो भूत है, ये भूतों की तरह सबको लगे हुए हैं, जिनकी तरह न जान छोड़ते हैं, न कुर्सी की जान छोड़ते हैं, न संसार की जान छोड़ते हैं, तो ये भगवान की विभूति नहीं कहलाएगा। तो श्री प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखा है, अब ये भी पहले शब्द के ऊपर ध्यान देंगे, the devotee demigod and the demons, इसका मतलब जितने भी देवता है वो सब भक्त हैं। देखो पहला लाइन में शब्द को पढ़ के देखना, devotee demigods क्या लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है, पहली लाइन में क्या लिखा है, गलत लिखा है, ये प्रभुपाद की अंग्रेजी में पहली लाइन को पढ़ो, डिवोटी डेमीगॉड्स, ये अर्थ का अनर्थ हो गया। डिवोटी डेमीगॉड का अर्थ क्या हुआ, सारे देवता भगवान के भक्त हैं। ये एक शब्द इतना भारी है, और ये शब्द नहीं है ना हिंदी में, अंग्रेजी में पढ़ा है, देखा अंग्रेजी देखी है आपके पास लिखा है ना, तो प्रभुपाद के इस शब्द को सही माना में समझना चाहिए। जो देवता है वो सब वैष्णव भगवान विष्णु के भक्त है, उनको भगवान ने कहा कि आप अमृत मंथन करो, भगवान की राय से तो वो देवता हुए ना, और दूसरा लिखा है असुर, डीमन उसको इनटू ब्रैकेट लिखा है असुर। तो देवता भक्त है ये पहला समझने चाहिए, देवता भगवान के भक्त है, उसका कभी भी अपमान अपराध नहीं करना चाहिए। वो वैष्णव अपराध में आता है, वो विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, उनके अपॉइंटेड डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं इस भौतिक जगत के। एक समय की बात है कि उन्होंने सागर का मंथन किया और उस सागर के मंथन से पहले विष निकला जिसको भगवान शंकर ने पिया, और उसके बाद कई और जीव निकले अमृत के रूप में। उनमें से एक घोड़ा निकला जिसको उच्चैःशर्वा कहते हैं, और एक और पशु निकला फ्रॉम उस अमृत के मंथन वाले समंदर से जिसको हाथी को एरावत कहते हैं। क्योंकि ये दोनों पशु जो हैं ये अमृत से उत्पन्न हैं, ये अमृत के संगी है, इसलिए उनका उसको विशेष कहा जाता है, और ये भगवान श्री कृष्ण की विभूतियां हैं। और नीचे श्री प्रभुपाद लिखते हैं मानव समाज में जो राजा होता है वो भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि वो संसार का पालन करता है, संसार का पालन करता है, मेंटेन लिखा है, पालन लिखा है, क्या लिखा है, वो संसार का पालन करता है। संसार का पालन कौन करता है, अगर देखते हैं तो विष्णु करता है, उत्पत्ति ईशा ब्रह्मा करता है, संहार शंकर करता है, पालन विष्णु करता है। इसलिए राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, क्योंकि वो प्रजापालक है, उसको प्रजापालक कहते हैं। और फिर कहते हैं प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे राजाओं को उनके देवताई गुणों के कारण चुना जाता था, उनके अंदर देवताई गुण हुआ करते थे, क्योंकि वो देवताई गुणों से संपन्न हुआ करते थे। और उनका उदाहरण है महाराज युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर तो साक्षात धर्मराज थे, तो इसका मतलब जो राजा होना चाहिए वो धर्म के ऊपर सबको चलाने वाला होना चाहिए। ऋषभदेव की शिक्षाओं में तो चारों में से राजा जो अपनी प्रजा को सद्मार्ग के ऊपर नहीं चला सकता उसको राजा बनने का अधिकार ही नहीं है। तो युधिष्ठिर जैसा राजा, परीक्षित जैसा राजा, और जब कोई ऐसा राजा नहीं मिलता है योग्य, तो साक्षात भगवान राजा बने। रामचंद्र एक मर्यादा पुरुषोत्तम राजा कैसे राज करता है उसका प्रमाण है। अब राजाओं का उदाहरण क्या दिया है, युधिष्ठिर महाराज जो सामान्य व्यक्ति नहीं थे, धर्मराज धरती के ऊपर उतर के आए थे, महाराज परीक्षित बहुत बड़े त्याग और वैराग्य से संपन्न कृष्ण भक्त थे, और भगवान श्री रामचंद्र जो बहुत ही पवित्र शुद्ध और पुण्य कार्य संपन्न करके प्रजा का हित करना चाहते थे। उन्होंने हमेशा अपने ही प्रजा का हित चाहा, उनके भले का विचार किया, उनका ये वैदिक साहित्य में जो राजा है उसको भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। लेकिन आजकल इस परंपरा का विलोप हो गया, ये बहुत भ्रष्ट हो गया। और धार्मिक जैसे धर्मराज की परंपराएं विलीन हो गई, विलोप हो गई, भ्रष्ट हो गई, नष्ट हो गई, और अब कुछ भी नहीं रहा है। प्रभुपाद ने एक शब्द अपने अनुभव से लिखा है, यह समझ लेना चाहिए कि उन राजाओं के समय में जब राजा धर्मात्मा थे प्रजा बहुत सुखी थी, और आजकल की प्रजा अपना अनुभव स्वयं करे कि वो कितनी सुखी है। उन राजाओं के समय में, अब नाम यहाँ भगवान श्री रामचंद्र का लिखा है, भगवान श्री रामचंद्र के राज के अंदर बाप के जीते हुए बेटा मर नहीं सकता था, ये न्याय था। बाप पहले जन्म लिया तो बाप को पहले मरना चाहिए, बेटा बाद में जन्म लिया तो बेटा बाद में मरना चाहिए। कोई आदमी बीमार नहीं हो सकता है, बीमार नहीं है, बूढ़ा नहीं हो सकता, टाइम से पहले मर नहीं सकता है। ऐसी ही राजाओं के राजा जमे वाले, और जब एक ब्राह्मण का बच्चा मर गया तो उसने रामचंद्र के सामने शिकायत की कि आप राजा हो, मैं पहले पैदा हुआ, पहले मेरे को मरना चाहिए, तो मेरा बेटा क्यों मरा? आपके राज में कोई ही अपराध हो रहा है, अधर्म हो रहा है। और रामचंद्र चिंतन करने लगे तो नारद जी ने आके कहा, जी हाँ रामचंद्र, इस वक्त एक बहुत दुष्ट व्यक्ति जो योग्य नहीं है, वो घोर तप करके ऐसा शक्ति अर्जन करना चाहता है जिससे विश्व का विनाश हो सकता है, और इसलिए ये अधर्म आपके राज्य में हो रहा है, इसलिए ये ब्राह्मण के बच्चे का समय से पहले निधन हुआ है। और तत्काल भगवान रामचंद्र ने अपने भाई भरत को कहा कि आप राजकाज को संभालो, और विमान पुष्पक के ऊपर चढ़ के हिमालय के अंदर जाके देखा तो एक व्यक्ति जो अयोग्य था लेकिन घोर तप कर रहा था, और भगवान श्री रामचंद्र वो तो भगवान है, उनके उद्देश्य को और उनकी कुयोग्यता को जानकर उसका वध कर दिया। जैसे ही उसका सर कटा, दूसरी तरफ ब्राह्मण का बेटा जीवित होके बैठ गया। तो ये नियंत्रण राम जी की सभा का है। कभी कब कुछ लोग कभी कहते हैं राम जी उस तपस्वी को, क्योंकि वो नीच जाति का था, हालांकि नीच जाति शब्द नहीं लिखा है, अयोग्य पुरुष था, तो सब कभी उसे प्रश्न लोग पूछते हैं तो इसका उत्तर सीधा है कि आज न्यूक्लियर, जिसके पास न्यूक्लियर जो आजकल का परमाणु का बम है, वो आदमी अगर दुश्मन के पास मिल जाए तो सत्यानाश पूरी दुनिया का करता है कि नहीं? तो ऐसे आदमी के ऊपर बहुत कड़ी चौकसी होती है, और कहीं गलती करे तो उसको पहले मार दिया जाता, नहीं तो पूरा देश क्या, विश्व विनाश हो सकता है, विश्व का विनाश हो सकता है। तो ऐसी त्रुटियां राम जी के राज में नहीं हो सकती थी। प्रभुपाद का प्रवचन है कि राम जी से आके पूछा ब्राह्मण ने कि मेरे जीते हुए मेरे बेटे की मृत्यु क्यों हुई है, आपके राज में ये अन्याय क्यों हुआ, पहले कभी ऐसे हुआ नहीं है। तो ये है, राजाओं के राज में प्रजा इतनी दुखी नहीं थी जितनी आज प्रजा अपने चुने हुए लोगों से दुखी है। पहले जैसे यूनिवर्सल मैनेजमेंट है, जैसे विश्व का संचालन है, तो उसके लिए इंद्र एक चुनना पड़ता है, एक मनु चुनना पड़ता है, सात ऋषि चुनने पड़ते हैं। तो ये कौन चुनता है? ये भगवान का अवतार चुनता है, मनवंतर का अवतार, जो अवतार जो भगवान विष्णु होते हैं वो एक योग्य व्यक्ति को इंद्र चुनते हैं। ऐसे हो सकता है कोई लाखों लोग हों जिन्होंने सौ अश्वमेध यज्ञ किए हों और इंद्र के पद के लिए एलिजिबल हों, लेकिन उनमें से एक को भगवान चुनते हैं जिसको योग्य जानते हैं। आज आपको यहाँ 100 MBA किए हुए लड़के हैं, लेकिन कंपनी योग्यता के हिसाब से एक को उनमें से जो है मैनेजर चुनेगी। योग्यता भले हो, उसके पास अहलियत है, काबिलियत है, वो डिग्री है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो किसी पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ हो। तो ऐसे एक इंद्र को भगवान स्वयं चुनते हैं, फिर एक मनु को स्वयं चुनते हैं जो मनवंतर का अध्यक्ष होता है, जो धर्म सद्धर्म चलाता है और जो मथब को धर्म का शिक्षा देता है, ये भगवान चुनता है। इनका कोई इनके लिए कोई पब्लिक से ओपिनियन नहीं लिया जाता कि किसको चुना जाए। तो ये तो असल में आज ही अभी आते हैं, आज कहीं दोपहर में थोड़ी देर बोल रहे थे तो ये कह रहे थे कि ये सब आया है पाश्चात्य व्यवस्था से। हमारे पास जो भी राजतंत्र आया है ये पाश्चात्य देशों का तंत्र है, हमारे देश का तंत्र नहीं। और प्रभुपाद जी के उदाहरण के अनुसार पाश्चात्य देशों के व्यक्ति बहुत आर्थिक व्यवस्था में शक्तिशाली होने के कारण मोटे तकड़े हैं, लेकिन आंखों से अंधे हैं, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि नहीं है, मानव जीवन के उद्देश्य का पता नहीं है, आत्मा के उद्धार के बारे में उनके पास कोई चिंतन नहीं है। वो तो अपने अलावा किसी और में आत्मा का होना भी नहीं मानते। जबकि भारतवर्ष की जो संस्कार हैं उनमें आर्थिक व्यवस्था भले इतनी ऐसी संपन्न न हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी नज़र बहुत दूर की होती है और आत्मा का उद्धार का पहले ध्यान दिया जाता है और भौतिक व्यवस्था को सुधारने का दूस बाद में दिया जाता है। तो वो लंगड़े के समान है। पाश्चात्य समाज पाश्चात्य देश अंधे के समान है, जो है तकड़े मोटे लेकिन दिखता नहीं है उनको कुछ। और जो भारत की संस्कृति है उनकी दृष्टि बहुत आत्मदृष्टि की दृष्टि से वो बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से वो भले कमजोर हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा इसलिए अगर दोनों को भवसागर पार करना है तो अंधे के कंधे के ऊपर लंगड़ा चढ़ जाएगा। तो अंधा उठा तो सकता है लेकिन देख नहीं सकता है, और लंगड़ा चल नहीं सकता है, इसलिए लंगड़ा रास्ता बताएगा तो अंधा भी पार हो जाएगा और लंगड़ा भी हो जाएगा। लेकिन होना क्या चाहिए, अंधे के ऊपर लंगड़ा बैठना चाहिए, लेकिन अब हुआ क्या है, अंधा लंगड़े के ऊपर चढ़ के बैठ गया। सबसे बड़ी परेशानी थे, आप देखिए आपका कपड़ा अंधे वाला, आपका भाषा अंधे वाली, आपका खान पान अंधे वाला हो गया कि नहीं हो गया, आपके अपने सारे संस्कारों में दिफ हो, और फिर राजनीति अंधे वाली, ये सब वो अंधा अब लंगड़े के ऊपर चढ़ के बैठा। एक तो लंगड़ा पहले कमजोर और ऊपर अंधा ऊपर चढ़ के बैठ गया, अब करे क्या विचार। अब ये स्थिति पूरे विश्व की है कि जिसको कुछ दिखता नहीं है वो कहता है कि अब चलो कहां से चलेंगे, वो जो चलाने वाला है वो तो दब गया उसके नीचे। तो ये सबसे बड़ी समस्या ये, आप देख लो संस्कारों में कितना बड़ा पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारे ऊपर है। हमको अपने संस्कार के ऊपर गौरव नहीं है, अपने वेशभूषा के ऊपर गौरव नहीं है, अपनी भाषा के ऊपर गौरव नहीं है, अपने भगवत गीता प्रभुपाद जी कभी कहते थे कि ये हमारा धन है, ये धन तो किसी के पास है नहीं, सब कंगाल है, ये धन है तुम्हारा, जिसके पास ये धन है वो दुनिया का सबसे धनी है, और कहीं भी जाएगा तो उनका लोग बैठ के प्रणाम करके चरणों में सेवा करेंगे, ये है धन, इस धन को तो हमने भुला दिया। तो इसलिए देख लो कि अंधा लंगड़े को दबा के बैठा हुआ है, इसलिए दुनिया दुखी, उनकी व्यवस्था से सब बिगड़ा हुआ और वही इस वक्त दुनिया सारी को चला रहे। और ये दृष्टिकोण सही नहीं है। प्रभुपाद जी उस इस्कान की संस्था को स्थापित करके और उन्हीं को पाश्चात्य देश के लोगों को भक्त बना के और उन्हीं के परिश्रम उत्साह और आर्थिक उनके जो शक्ति थी उससे इस पूरी संस्था को विश्व में प्रचार किया। तो अभी भी आवश्यकता है कि वैदिक जो भारतीय वैदिक दृष्टिकोण है उस प्रक्रिया से राज या घर से लेके महले से लेके फिर आगे से नहीं हो सकता। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ये श्लोक पूरा हुआ, इसका भाव पूरा हुआ। किसी कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो आज पांचशील में श्री गौरनिताय मंदिर में रविवार के दिन भगवद गीता के 10वें अध्याय के 27वें श्लोक में आपने भाग लिया, आपका धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है?